بسم الله الرحمن رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो क्या पढ़ रहे थे हम आपकी क्लास में बताएगा बेटी खान
हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नहीं बना है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है और उनको इस काम होते हैं।
हमारे अकाबरीन ने एजुकेशन सिस्टम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है नहीं है क्यों क्योंकि ये आम लोगों की आवाम की प्रायोरिटी नहीं, तो हमने उनको सपोर्ट नहीं किया इस वाले काम के अंदर, इस वजह से वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बन सकता। ये हमने आखिरी बात करी थी पिछले क्लास के अंदर। और कोई और बात मेरी याद ध्यान के लिए?
कि जब तो हमारे जब जब शुरू में तो जैसे पहले देखा था
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी। इसके ऊपर मुझे एक और बात याद आ गई, क्या थी वो? सैटरडे को ना तो यही बात असल में जो हम बयान पढ़ रहे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजील तआला के बारे में, तो उसमें ये वाला वाकया आया था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजील तआला ने एक दफा बल्कि बदर के मार्के में एक काफिर को नेजा मारा और वो उसकी वजह से हलाक हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजील तआला सॉरी जुबैर बिन अवाम रजील तआला से वो नेजा जो है ना यादगार के तौर पर एक सोवेनियर के तौर पर मांग लिया और अपने पास जो है उसको महफूज कर लिया, और हत्ता कि वो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस दुनिया से खत्म होने के बाद भी वो नेजा फिर खुलफाए राशिदीन के पास आया और वहां पर भी उसको महफूज किया गया, और फिर वो बिलाखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजील तआला ने दूसरे खलीफा राशिद उमर रजील तआला से उसको मांग लिया कि मेरे बाप का कारनामा था तो उसको आप मुझे दे दीजिए। तो उसके ऊपर हमने फिर आप लोगों से पूछा था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया हालांकि एक इंसान की मौत हो रही है, और जो है वो जाहिर है जिस तरह से और भी बहुत सारी बातें सोची जा सकती हैं कि बंदा मार दिया तो फिर उसके ऊपर खुश होने की क्या जरूरत है, इसको जो है वो सोविनेर के तौर पे इकट्ठा करने की जमा करने की क्या जरूरत थी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके ऊपर सारी की सारी बात चली थी कि जो काफिर होता है जब तक मैदान जंग में वो ना आए और मुसलमानों से लड़ाई शुरू ना करे उस वक्त तक तो हम उसके साथ जो है बहुत ही सॉफ्ट मामला रखते हैं और उसको दावत देते रहते हैं, उसको बुलाते रहते हैं दीन की तरफ के मान जाओ मान जाओ मान जाओ। लेकिन जब मैदान जंग आ जाता है तो उस वक्त जो है ना वो इस रहम दिली को फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के वो इवन मैदान जंग के दौरान ही अगर कलमा पढ़ ले, अगर लड़ाई के दौरान ही वो कलमा पढ़ ले तो फिर दोबारा उसको स्विच ऑन कर देना होता है। ठीक है, और उसको जो है माफ कर देना होता है। आपको उम्मीद है कि याद होगा वो मशहूर वाकया हजरत इनका उसामा बिन जैद रजील तआला का वाकया कि एक काफिर के ऊपर चढ़ गए थे और उसको मारने वाले थे कि उसने कलमा पढ़ दिया, तो इन्होंने जो है ना फिर भी उसको मार दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो आप बहुत नाराज हुए उनके ऊपर और फरमाया कि क्या तुमने उसका दिल चीर करके देखा था, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने तो इसलिए उसको मार दिया क्योंकि जाहिर है वो अपने जान की खौफ की वजह से पढ़ रहा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें क्या पता कि वो जान की खौफ से पढ़ रहा था, उसकी दिल की क्या नीयत थी, तुमने उसका दिल खोल के देखा था क्या? तो ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत नाराजगी का इसके ऊपर इजहार किया, लेकिन चूंकि वो स्पर ऑफ द मोमेंट में मैदान जंग का ही मामला था, इस वजह से सदा वजा का कोई मामला नहीं किया गया उसामा बिन लादेन बताने के साथ। ठीक है, तो ये चीज फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो सोच हमारे अंदर आती है ना कि भाई ये क्या बात है, काफिर जो है वो उसके बारे में इस किस्म का सोच क्यों रखते हैं ये लोग, और उसके मरने के ऊपर जो है वो खुशी क्यों मना रहे हैं, उसके मरने के ऊपर उसके जो मारने वाला हथियार था उसको जो है वो सोवेनियर के तौर पे क्यों ले रहे हैं, तो उसकी वजह बताई थी कि जब काफिर इस तरह से जहन्नुम रसीद हो जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की लानत कंफर्म हो जाती है। ठीक है, और फिर बाद में अल्लाह ताला ने, हम तिलावत कर रहे थे अपने रोजाना की जो नाजरा तिलावत होती है, तो उसके अंदर जो है ना ये आयत भी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी, ये सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लजीना कफरू, कि बेशक वो लोग कि जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इनकार किया। काफिर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानता उसको काफिर कहते हैं ना। ठीक है, जिसने मेरे नबी को नहीं माना वह मातू, और वो मारा गया, वो मर गया। देखिए अल्फाज आपकी क्लास के लिए आए, ठीक है, सोचें इसको किसने दिए? मैंने दिए। किसने दिए भाई? अल्लाह। किसने दिए? अल्लाह ने। अल्लाह ताला हमारी क्लास सुन रहा था क्या? नहीं सुन रहा था। हम बड़े स्पेशल हैं, अल्लाह हमारी क्लास सुनता है, हम बड़े स्पेशल लोग हो गए हैं, इसका मतलब है क्यों? अल्लाह ताला खाली हमारी क्लास सुनता है? अल्लाह ताला सबकी क्लासेस सुनता है। ठीक है, अल्लाह ताला सबकी बातें सुनता है, अल्लाह ताला सबको देखता है, अल्लाह ताला सबके दिलों के अहवाल को जानता है, तो हमारी भी दिलों के अहवाल से भी जानता है, और हमारे जो क्लास के हवाले उनको भी जानता है। तो अल्लाह ताला सुन रहा था, और अल्लाह ताला ने फिर इसके ऊपर अपने कुरान मजीद से आप लोगों को दलील अता फरमा दी। किसने अता फरमाई? अल्लाह ने अता फरमाई, मैंने नहीं अता फरमाई, हजरत जी ने अता नहीं फरमाई, नक्शबंदी सिलसिले ने अता नहीं फरमाई, ठीक है ना, हिदायतुल्ला भाई ने अता नहीं फरमाई, किसी ने अता नहीं फरमाई, सिर्फ अल्लाह ने अता फरमाई, ठीक है ना। इस अल्लाह का हमें लिहाज करना चाहिए, वो हमारा कितना लिहाज कर रहा है, वो हमारा कितना लिहाज कर रहा है, उसका हमें नहीं लिहाज करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? सही। तो अल्लाह ने यह आयत अता फरमाई इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो मर गए। ठीक है, क्योंकि हम क्लास में एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे, मर गया वो कुफर की हालत में, वहुम कुफारुन, आगे यहां तक फरमा दिया, और इस हाल में कि वो काफिर था, इस हाल में कि वो काफिर था, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है, वल मलाइकत ही, और उसके मलाइका की लानत है, वल नासी अजमाइन, और सारी इंसानियत की लानत है उसके ऊपर। लानत का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? What does this word लानत means? दुल्ला भाई को पता है? Yes. ये तो तुम्हारे इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, कर्ज का मतलब मुझे समझ में आया। तो लानत का मतलब क्या है, मफहूम बताएंगे, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं जी। रहमत से दूरी, अल्लाह ताला की रहमत अब उसको नहीं पहुंचेगी, हालांकि अल्लाह की रहमत कैसी है, हर चीज को वसी है, हर चीज को कवर करती है अल्लाह ताला की रहमत, लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह की लानत हो जाए वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है। गोया के आप इस कमरे के अंदर है, इस कमरे के अंदर गैस मौजूद है जिसको एयर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, हर जगह गैस मौजूद है, वहां भी एयर मौजूद है, यहाँ भी एयर मौजूद है, यहाँ भी एयर मौजूद है, लेकिन अगर आप एक वैक्यूम बलून बना लें, वैक्यूम बलून बना लें जिसके अंदर से एयर आप सक आउट कर दें, ठीक है ना, तो वो अब बलून जो है, ठीक है, वो इसी कमरे के अंदर मौजूद है ना, उसके चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर तो मौजूद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको सक आउट कर लिया गया है। यही मामला जो है वो लानत वाले शख्स के साथ होता है, जिसके ऊपर अल्लाह की लानत हो जाती है ना, तो वो अल्लाह की रहमत से ऐसे दूर हो जाता है, अगरचे कि अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की आयत में क्या फरमाया कि ऐसे लोग जो हैं जो कि कुफर की हालत में मर जाते हैं ना, तो फिर उनके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह के मलाइका की लानत होती है, वन्नास अजमाइन, और सारे लोगों की लानत होती है। ठीक है, क्लास में मजीद इसको समझाया भी था कि सारे लोगों की लानत का मतलब क्या है, काफिर लोग तो उसके ऊपर लानत नहीं करते। काफिर लोग तो उसके ऊपर लानत नहीं करते जो काफिर मरता है, वो तो बल्कि उसको पता नहीं और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में करते हैं। तो फिर वन नासी अजमाइन का मतलब क्या है भाई, आपने सुन सकते हैं क्या? क्लास को सुना श्याम भाई से पूछ लेते हैं। जिन वन नासी अजमाइन, अजमाइन का जो लफ्ज है ना, अब उसके बाद फिर एक्सेप्शन निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इसके अंदर। जी चले,
दिल
यही दिल लानत कर रहे होते हैं, ठीक है, काफिरों के दिल लानत कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल जो है ना ये काफिर के कंट्रोल में नहीं होता। काफिर के कंट्रोल में उसकी क्या चीज होती है, उसकी अकल कंट्रोल में होती है, दिल कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो दिल जो है वो अल्लाह के हुक्म से लानत कर रहा होता है, उसको पता भी नहीं चल रहा होता कि मेरा दिल तो काफिरों काफिर के ऊपर लानत कर रहा होता।
दिल वाली बात सीखते सारे मान लग और बता रहे कहाँ से केवल नास सुनाई जो कुफार से खबर कर रहे थे उनको नास की कैटेगरी से निकाल देना चाहिए।
नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, वही गुफारू का आप इंसानों की कैटेगरी से ही निकाल देंगे, फिर वो क्या बन जाएंगे उसके बाद, घोड़े गधे बन जाएंगे? नहीं, बनते नहीं है। अल्लाह ताला क्या कहा तो है कि वो उलाई का कल अनाम बल हम अदल, लेकिन वो असल में तो मतलब ये नहीं होता कि वो मवेशी हो जाते हैं, इंसान ही रहते हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इसमें फिर काफिरों को भी अल्लाह ताला फरमान है, तो काफिरों को भी इंसान ही कह रहे हैं अल्लाह ताला, काफिर भी इंसान ही है। एनीवे तो ये सारी बात हो रही थी, फिर उसके बाद अगला वाक्य हजरत ने लिखा था कि बदर के मैदान में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत उन्होंने जर्द अमामा बांधा हुआ था, जर्द जर्द यानी येलो, ठीक है, येलो अमामा पगड़ी बांध करके वो बदर के मैदान के अंदर आए थे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आज फरिश्तों ने हजरत जुबैर हजरत की तरह के अमामे बांधे हुए थे, बांधे हुए हैं, यानी उनका इमामा अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सारे के सारे आज जर्द इमामे बांध करके जाओ मैदान जंग के अंदर, ठीक है। वरना मैदान जंग के अंदर अमूमन जो है नबी अलैहिस्सलाम किस रंग का इमामा बांध के जाते थे, काला इमामा बांध के जाते थे, ठीक है। आखिर में जो खुरासान से फौजें आएंगी और फिर गजवा हिंद होगा तो वो काले इमामे बांधे हुए होंगे, ठीक है, ये मैदान जंग के अंदर होता था। आज जो है वो हमारे भाई साहब ने भी बांधा हुआ है, पिछली क्लास में बांधा हुआ था, लेकिन अमूमी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम किस रंग का इमामा बांधते थे, यानी पीस टाइम के अंदर, पीस टाइम के अंदर कौन सा इमामा बांधते थे, किस रंग? सफेद, ठीक है, ये सब कोई पता है तो, ठीक है, सफेद इमामा पीस टाइम में बांधते थे, लेकिन वॉर टाइम के अंदर फिर काला इमामा बांधते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है काला इमामा जो है वो हम पीस टाइम में नहीं बांध सकते या सफेद इमामा उधर नहीं बांध सकते, ऐसा कोई नहीं है, इसके अंदर फर्ज वाजिब वाली कैफियत नहीं है। तो किसी की अपनी प्रेफरेंस है, कोई बांधना चाहता है, जैसे हमारे हजरत के जो छोटे साहिबजादे हैं वो भी अक्सर काला इमामा बांध करके इज्तिमा में आ जाते हैं, हालांकि हजरत जी और सारे लोग जो है सफेद इमामा बांध रहे हैं वो काला इमामा बांध करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो कोई गलत नहीं कहा जा सकता कि नहीं उन्होंने गलत काम किया, ठीक है, तो ऐसा होता है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम के जन्नत में, अच्छा सॉरी, इससे पहले के नबी अलैहिस्सलाम ने जर्द इमामा भी, जर्द इमामे का है हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की, ग्रीन इमामे का तो है, नबी अलैहिस्सलाम ने सब्ज इमामा बांधा, आदतन नहीं बांधा, यानी वंस ए नवाइल का भी बांध दिया, ठीक है, आदतन तो नबी अलैहिस्सलाम ने सफेद इमामा बांधा, और जो है वो ब्राउन इमामे का भी आता है, जब ये कुछ बरेली हजरात जो है ना वो ब्राउन इमामे के ऊपर आ गए, और सफेद इमामा तो बहुत कसरत के साथ हमेशा ही, बल्कि बाहर कभी भी नहीं निकले बगैर इमामे के, ठीक है, इज्तिमा में जाकर के हम भी बांधते हैं यहाँ पे बांधेंगे तो क्योंकि पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड सिस्टम का है ना, तो जरा एहतियात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी चीजों की। तो नबी अलैहिस्सलाम के जन्नत में हवारी, गजवाए खंदक में नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा पूछा कि दुश्मन की खैर खबर कौन लेकर के आएगा, तो हर मरतबा ना हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाया, तो नबी अलैहिस्सलाम इसके ऊपर बहुत खुश हुए और ये वाला कौल फरमाया जो कि जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की फिर पहचान बन गया। आपने फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन, हर नबी का एक हवारी होता है, हवारी यानी उसका मददगार, उसका हेल्पर। हर नबी का एक हवारी होता है, वो इन हवारी अज़ुबैर इब्न अय्याम इब्न अवाम, ठीक है। मेरे हवारी जो है ना वो जुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो हवारी का लफ्ज इस्तेमाल किया। वैसे तो जो सबसे ज्यादा करीबी थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो गोया कि असिस्टेंट के तौर पर जो मेरी असिस्ट करने वाला है उसके लिए उनको एक खास मौके में ये लकब भी दे दिया, तो जुबैर बिन अवाम ने बताया उनको। वरना ये लफ्ज जो है वो ज्यादातर ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यून के लिए इस्तेमाल होता है ना। कितने थे वो? 12, 12 हवारी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, फिर एक और मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उनको फरमाया, फिदा का अबी व उम्मी, ए जुबैर मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो, तुम पर कुर्बान हो। यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जुबैर को कि तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप फिदा हो, यानी इतना खुश हो, इतना खुश हो। जब बहुत खुश होते थे ना अरब, तो अरब लोग जो है वो इस तरह की बात करते थे। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि कोई किसी दम बहुत ज्यादा खुश हो तो हम उसको ये नहीं कहते उर्दू जुबान के अंदर कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाए, ठीक है। लेकिन ये एक मुहावरा था अरब जुबान के अंदर, इस तरह से बात की जाती थी, ये खुशी का इजहार होता था किसी से, ठीक है, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो सहाबा अक्सर ही कहते रहते थे ये वाली बात, लेकिन बात तो तब है कि नबी अलैहिस्सलाम किसी के लिए ऐसी बात कहें। आप सब सुन रहे हैं जुबैर अज़ीम के लिए ऐसी बात फरमाई। अच्छा, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का पेशा यानी प्रोफेशनली जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे? तो इसमें दोनों बातें मौजूद हैं। एक तो ये कि जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो ट्रेडर थे, ठीक है, यानी सामान लेके जाते थे, बेचते थे एक जगह पे, फिर वहां से सामान खरीद के लाते थे दूसरी मार्केट में, उसको बेचते थे। जो प्रॉफिट मिलता था तो वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह प्रॉफिट उनको मिलता था। लेकिन जब मदीना तैयबा में मूव हो गए थे ना, तो वहां पे जुबैर उन्होंने फिर लैंड वगैरह भी खरीद ली थी, ठीक है, बागात वगैरह भी खरीद लिए थे, और जरूरी जमीन जिसपे काश्तकारी होती है, इरिगे यानी कल्टिवेशन वगैरह होती है, ऐसी जमीन भी खरीद ली थी। तो फिर इस तरह से फिर जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो जमींदार भी बन गए थे, ठीक है, काश्तकार जमींदार भी बन गए थे, और अल्लाह ताला ने उनकी काश्तकारी के अंदर भी बहुत बरकत दी थी, यानी उनको खूब प्रॉफिट हुआ इसके अंदर भी। जिस तरह तिजारत के अंदर खूब प्रॉफिट हुआ, उसी तरह से इसके अंदर भी इनको खूब प्रॉफिट हुआ। इतने मालदार थे कि उनकी चार बीवियां थीं, और जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त उनकी चार बीवियां थीं, वरना तो उन्होंने जो टोटल शादियां की थी वो गालबन 5 या 6 शादियां की, लेकिन बाद में उनको तलाक दे दी, ठीक है, या किसी बीवी का इंतकाल हो गया। तो इस तरह से जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ उस वक्त इनकी चार बीवियां थीं, जो कि मैक्सिमम अलाउड नंबर है एक मुसलमान मर्द के लिए। तो इनके इंतकाल पर जो इनकी विरासत तकसीम हुई ना, तो हर बीवी को 12 लाख दीनार विरासत मिले, 12 लाख दीनार, ठीक है। अच्छा, जब इंसान मरता है तो क्या सिर्फ बीवी में विरासत तकसीम होती है?
जी
जी, बीवी को तो 1/8 मिलता है, उसके जो पूरी वेल्थ थी ना उसको 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो 7 हिस्से होते हैं वो उसकी औलादों में तकसीम होते हैं, बीवी को तो सिर्फ 8वां हिस्सा मिलता है, ठीक है। और उस 8वें हिस्से को जब 4 में डिवाइड किया जाए तो फिर तो वो और कम हो जाता है, ठीक है। इनकी एक बीवी को 12 लाख दीनार मिले, एक बीवी, तो सोचे इनकी टोटल वेल्थ का इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी टोटल वेल्थ जो है वो कितनी होगी, ठीक है। हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर वही बात जो कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी यही बात हुई थी ना कि तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है वो इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, इतने अमीर थे, बल्कि आरू भाई ने जो है वो कैलकुलेट करके भी हमें मैसेज भेज दिया था उसके ऊपर, इतना उनकी जो है वो वेल्थ थी उस वक्त, यानी कितनी बनती थी, करोड़ों रियाल में शायद बनती थी जमाने के हिसाब से, आज के हिसाब से। तो उस वक्त भी हमने यही बात करी थी कि भाई ये जो दीनदारी है ना, तो दीनदारी की वजह से जो है ना वो कोई गरीब नहीं हो, ठीक है। जब कोई दीनदारी पर आ जाता है, दीन की जिंदगी पर आ जाता है, तो ये जो एक शैतान ने और बेवकूफ इंसानों ने ये कॉन्सेप्ट फैलाया हुआ है कि भाई अब तुम खाओगे कहाँ से, अब तुम कमाओगे कैसे, अब तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। दीनदारी की वजह से कभी कोई गरीब नहीं होता। हाँ, अगर कोई पहले से गरीब था तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई पहले से बहुत गरीब था तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप बताएं अगर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर कोई पहले से गरीब था, सोचें। ये आइए वाला सवाल है जी,
तो और गरीब हो जाएगी।
और गरीब हो जाएगा ये तो पिछला जुमला आपने नहीं सुना इसका मतलब। पिछला जुमला भी हम क्या कह रहे थे कि दीनदारी की वजह से कोई गरीब नहीं होता, ठीक है। आपने तो उसकी नफी कर दी, गरीब और गरीब हो जाएगा जी।
तो जितना उसके पास वेल्थ है वो कांस्टेंट उसी अमाउंट पे रहे वो, बट उसको जो है वो दिल का सुकून मिल जाए। और सेकंड ऑप्शन ये है कि मतलब एक बात यह है कि वो जो है डिकेस बन
एग्जैक्टली ठीक है भाई, तीन ही सूरतें हो सकती हैं ना, या तो वो और गरीब हो जाए, या जिस हालत में है उसी हालत में रहे, या जो है वो अमीर हो जाए। चौथी सूरत क्या होगी, कुछ फोर्थ डायमेंशन के अंदर चला जाए क्या हो तो यही तीन सी सूरतें हो सकती हैं। एक का हमने पहले ही इनकार कर दिया कि कोई दीन की वजह से गरीब नहीं होता, तो अब दो ही सूरतें रह गई ना, कि या तो वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो पहले था, दीन में आने से पहले भी वो गरीब था, दीन में आने के बाद भी वो गरीब था। जैसे कि बहुत सारे सहाबा कराम पहले भी गरीब थे, बाद में भी गरीब रहे। सबसे बड़ी मिसाल कौन सी,
अच्छा
अली रजी अल्लाह तआला की, ठीक है ना। वो पहले भी गरीब थे, वो दीन पे आने के बाद और दीन में चलने के बाद भी वो गरीब ही रहे। वो क्यों गरीब रहे कि उनका मिजाज ही ऐसा फकीराना था कि वो कमाई की तरफ उनकी तवज्जो ही कोई नहीं थी ना, ठीक है। तो वो बस जो आया सारा का सारा खत्म कर दिया। वो कभी उनके पास ज़कात वाजिब नहीं हुई, कभी उनके पास सेविंग हुई ही नहीं, ठीक है। इसी तरह के और भी बहुत सारे सहाबा थे जो के गुलाम थे या जो बहुत ही नीचे दर्जे के काम करने वाले थे, वो गरीब थे, वो गरीब ही रहे। अस्हाबे सुफ्फा में भी अक्सर ऐसे लोग होते जो कि गरीब ही रहे, ठीक है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अमीर हो जाएंगे, ठीक है, और वो अमीर हो गए। और ये फिर सहाबा के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हुए कि जिनके अंदर दौलत जो है ना वो बहुत ज्यादा आई फिर इनके पास, ठीक है। तो चंद तो उस्मान गनी रतान तो पहले से भी अमीर थे, चलो उनकी इमारत जो है वो और बढ़ गई। तलहा रतान पहले से भी अमीर थे, वो उनकी इमारत जो है वो रही, स्टेबल रही। जुबैर रतान जो है वो और ज्यादा अमीर हो गए, वगैरह वगैरह इस तरह की।
ये
क्या बताएं,
वो दुआ करी थी, दुआ करवाई थी आपसे, दुआ करी थी पास बात पहले से भी।
पहले से अमीर नहीं थे? अच्छा, तो उन्होंने दुआ करवाई थी, तो
मैं ये होता था
अनस अतान के नबी अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ करी थी, तो उनके औलाद में भी बहुत बरकत हुई थी। 100 से ज्यादा जो है वो उनकी औलादें थी, और माल भी बहुत उनको मिलता था। इतना माल था कि वो सोने की ईंटें होती थी उनके पास, और वो उन ईंटों को कुल्हाड़ों से तोड़ तोड़ करके जो है ना वो छोटे पीसेस बना करके फिर मार्केट में सेल करके आते थे। क्योंकि ईंट उठा करके आप मार्केट में जाएंगे तो कहीं वही पूरी मार्केट ही आप खरीद के ले जाएं, इसका मतलब है। इस ईंट का तो शायद जाहिर है वो तो छोटी कोई चीज खरीदने के लिए जाते थे, तो कुल्हाड़ी से तोड़ते थे, छोटे छोटे पीसेस निकलते थे, वो ले आकर के बेचा करते थे जी। नहीं
गरीबी का
समझा नहीं आपकी बात।
फिर
हाँ
मुसलमान मुझे तुमसे
क्यों मुस्लिम जो हैं वो, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो सहाबा के अंदर भी आती है। सहाबा में इसकी कौन सी बहुत बड़ी मिसाल है?
जुबैर
जुबैर रहता है, उनके बारे में तो पढ़ रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला, ठीक है, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला जो हैं, ये बहुत अमीर घराने के थे, ठीक है। और जब ये मुसलमान हुए तो इनके फैमिली वालों ने इनका बिल्कुल बायकॉट कर दिया। तो जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ है ना, शहीद हुए थे, तो इनके बदन के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि उनके उनको कफन भी नहीं मिल सका था सही तरीके। और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उस वक्त देख करके यही फरमाया था कि ये वो हैं कि जिनके यानी बहुत ही जबरदस्त किस्म के क्वालिटी वाले कपड़े पहना करते थे और ऐसे हुआ करते थे। और ठीक है, तो अब इस केस को जो है ना वो इस तरह से फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो ये कि ये एक एक्सेप्शन कहला सकती है, ठीक है, कि एक्सेप्शन जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन चूंकि कम होती हैं तो इस वजह से अलअकल्लु कल मादूम या कलीलु कल मादूम, जो बहुत कलील होती हैं तो वो ना होने के बराबर होती हैं। दूसरी तरह से इसको ये समझाया जा सकता है कि भाई हम जो है ना वो इस तरह के केसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि जिसके अंदर के उन्होंने फिर बिजनेस वगैरह फिर नहीं किया जा करके, ठीक है, और वो बस अपने दीन के इल्म के अंदर लग गए, दीन की मेहनत के अंदर लग गए, दावत और तबलीग के अंदर लग गए, और बिल्कुल भी उन्होंने रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं दी, ठीक है। तो देखिए, पहले तो उनको जो है वो खानदान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था ना, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने चूंकि सिर्फ दावत और तबलीग के अंदर या इल्म हासिल के अंदर करने के अंदर अपने आप को फुल्ली डेडिकेट कर दिया, तो इन्होंने रिस्क की कमाई के लिए तो फिर कोई भी मेहनत नहीं करी ना, और वो उसके ऊपर राजी और खुश थे। तो दिल के अमीर तो ये फिर भी हो गए, राइट, दिल के अमीर तो ये फिर भी हो गए, क्योंकि इनको दिली कनाआत, सुकून, इत्मीनान, ये सब कुछ तो इनको फिर भी मिल गया। लेकिन जो फिजिकल वेल्थ होती है उस तरफ चूंकि इनकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, तो फिर जो है ना वो इनको नहीं मिला। लेकिन अगर यही शख्स जो है वो कारोबार करना शुरू कर दे, ठीक है, हलाल तरीके से शरीयत के एतबार से कारोबार, शरीयत के उसूल कवायद को फॉलो करते हुए कारोबार वगैरह शुरू कर देना या मेहनत मजदूरी वगैरह शुरू कर दे कि वेल्थ को जरा सा इसने हासिल करना है, तो अल्लाह ताला इसकी मेहनत के अंदर, इसके वक्त के अंदर बहुत ज्यादा बरकत देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जी दीनदार बनने के बाद जो है ना वो आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसकी बेशुमार मिसालें पहले भी मौजूद हैं और आज के दौर के अंदर भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। रिस्क जो है वो बंद नहीं होता दीन की वजह से, ठीक है। तो हम इसको फिर ऐसे ही समझ सकते हैं ना कि भी न्यू न्यू कॉन्वर्ट्स के जो है वो पीछे से सपोर्ट सिस्टम तो खत्म हो जाता है, अब डिपेंड करता है कि वो आगे किस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा, माल जैसे अली रतन भी तो इसी तरह से ना, उन्होंने फिर इस तरफ तवज्जो ही बिल्कुल नहीं करी, तो वो गरीब पे गरीब ही रहे सारी जिंदगी। उसी तरह से और भी लोगों को इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, माल के बावजूद फकीराना जिंदगी। तो कहते हैं कि इतने अमीर होने के बावजूद उनकी जो अपनी जिंदगी थी वो फकीराना थी। फकीराना जिंदगी की क्या डेफिनेशन होती है? फकीराना जिंदगी, गुस्सा भाई,
अल्लाह के रास्ते में अपना सारा माल खर्च करते
अल्लाह के रास्ते में सारा माल खर्च कर देते थे, ठीक है। और कोई इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन? प्लीज,
सिंपल लाइफ
सिंपल लाइफ। अच्छा, लफ्ज फकीर जो है, एक तो आप लोग तो खैर फकीर जुल्फकार अहमद नसबंदी की वजह से फकीर का लफ्ज अलहमदुल्ला हमारे यहाँ एक डिफरेंट मीनिंग इख्तियार कर गया है, ठीक है, क्योंकि हजरत जी जो है वो अपने लिए फकीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव बिकम फेमिलियर विद दिस, ठीक है। लेकिन आम तौर पे इसका मतलब ये नहीं लिया जाता। एक दफा हम अमरीका के अंदर ना हजरत जी की किताबें बेचा करते थे, ये हमारा ज्यादातर काम उसी में लगता था सारे टाइम्स में। तो एक दफा हमने एक बड़ी बहुत बड़ी इसना कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे, सारे दुनिया के बल्कि मुसलमान आते हैं, अमरीका के खाली नहीं। तो उसमें ना बुक्स फेयर होता था, बुक स्टॉल रखते थे उसके अंदर, तो हम हमेशा उसके अंदर फकीर पब्लिकेशंस का बुक स्टॉल लगाते थे, ठीक है। तो एक दफा एक साहब आए, पाकिस्तानी अंकल ही थे, वो आकर के ना स्टॉल पे आके हंसना शुरू हो गए, बस बेसाख्ता हंसे जा रहा है वो बंदा। हम खड़े उसकी शक्ल देख रहे हैं, क्या हो गया भाई इसको, क्यों हंसे चला जा रहा है। हैं बस क्या करूं मैं, उधर भी देख करके आया, वहां पर भी कुछ फकीर वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी फकीर पब्लिकेशंस, ये क्या फकीरों वाला आप लोगों ने काम शुरू किया हुआ है। वो हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, ठीक है। तो वो इसी वजह से हंस रहा था कि भाई फकीर की जो डेफिनेशन होती है हमारे मुआशरे में वो ये होती है कि जो भीख मांगने वाला हो, ठीक है, भीख मांगने वाला, गदागर जिसको कहते हैं ना, उसको फकीर कहा जाता है। लेकिन अल्लाह वालों की नजर तो फिर कुरान पे जाती है और कुरान मजीद से उसकी तारीफ लेते हैं, हमारी तारीफें कुरान मजीद से मिलती हैं। तो कुरान मजीद में जब देखा तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इला अल्लाह, कि ए इंसानों तुम तो अल्लाह ताला के सामने फकीर हो। अलहमदुल्ला हमें भी आयत याद आ गई, अंकल को हमने भी चुप करा दिया लग कि भाई हमने तो फकीर नाम किस वजह से रखा हुआ है, कुरान मजीद की वजह से। हाँ यार ये तो आपने बड़ा सही जवाब दिया है, ठीक है, बड़े माशाल्लाह मरूब हो गए इस बात से। खैर, तो फकीर जो है ना वो इस शख्स को नहीं कहते जो कि दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो और भिखारी रखते हो, बल्कि जो कि अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जो है ना वो किसी काबिल ना समझता हो, ठीक है, बिल्कुल खाली हाथ समझता हो, और इसकी वजह से जो कुछ भी उसके पास आता है ना वो उसको अल्लाह ताला की नेमत समझता है कि ये अल्लाह का दिया हुआ है मेरे पास, तो अल्लाह का शुक्र बनता है भाई इसके अंदर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। जो इसके पास आता है उसके ऊपर वो शुक्र अदा करता है, और जो उसके पास से चला जाता है या उसके पास नहीं आता वो उसके ऊपर सब्र करता है। तो ये शुक्र और सब्र वाली जो जिंदगी होती है ना, इसको फकीराना जिंदगी कहते हैं। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ना हो, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ना हो, आपकी जो है वो गाड़ी जो है वो हर वक्त फटफट फटफट करके बंद बंद हो जाती हो, ठीक है, या आपके जो है वो कपड़े फटे फटे पुराने आप पहनते हो, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से असल फकीरी जो होती है वो दिल की फकीरी होती है। अब इनके बारे में तो ये फरमा रहे हैं ना कि एकदम इससे एक जुमला पहले कह रहे हैं कि मरने पर 12 लाख दीनार जो है वो एक बीवी को मिले, लेकिन फकीराना जिंदगी गुजारी। तो बाहर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं कि उनकी शख्सियत की खसूसी बात यह है कि इतना माल पैसा होने के बावजूद इतनी फकीराना जिंदगी गुजारना और मौत से इतना बेखौफ होकर जिंदगी गुजारना, ये अजीब चीज है। बस ये पढ़ के खत्म कर लेते हैं ये वाला पैराग्राफ। कहते हैं कि आमतौर पर देखा गया है कि जिस बंदे के पास माल ज्यादा होता है ना, तो उसके अंदर और कोई कमजोरी आए ना आए उसको मौत से बड़ा डर लगता है, ठीक है। जिसके पास माल ज्यादा है उसको मौत से डर लगता है। क्यों मौत से डर लगता है? पैसे
अच्छा
कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो वजह नहीं बना, बताइए जनाब, बताए।
अच्छा
पैसों से मोहब्बत होती है, और एक नाम
अच्छा
नेमतों से महरूम नहीं होना चाहता। ऐसे कोई
दुनिया से इतनी लगाव जिसकी तो नहीं था
रियान
लग्जरी
लग्जरी लाइफ
लाइफ
पैसों के साथ ही रहेंगे जी अब्दुल्ला भाई।
अभी
ओहो, मुझसे बड़ी गलती हो रही है कि इसको मैं
अभी
अभी आया चले, जजाकला, क्योंकि उसके पास कोई आमाल नहीं हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पैसे हैं तो आमाल नहीं।
जो नहीं करते हैं
जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, ठीक है, उसको मरने से खौफ आना क्यों शुरू हो जाता है? वो एक कंडीशन की वजह से, ठीक है, एक कंडीशन की वजह से उसके साथ ऐसा होता है। अगर वो कंडीशन मीट होती है ना तब उसको मरने से खौफ होता है, अगर वो कंडीशन वो नहीं पूरी कर रहा होता तो फिर उसको मरने से खौफ नहीं होता। वो क्या? दुनिया वगैरह ये तो मौत। तो भाई पैसे तो इनके पास बहुत ज्यादा थे ना, हमारे तो वहम गुमान से ज्यादा थे इनके पास, इनके अंदर वो दुनिया क्यों नहीं थी? देखें, पैसा जो है ना, पैसा इन ऑफ इट सेल्फ, सोना हो, चांदी हो, डॉलर हो, रियाल हो, रुपए हो, कुछ भी हो, इन ऑफ इट सेल्फ इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। कैन यू ईट फूड, कैन यू ईट डॉलर्स, राइट? कैन यू मतलब चले औरतें तो चले फिर भी सोना जो है वो पहन सकती हैं, मर्द तो सोना पहन भी नहीं सकता, ठीक है, रेशम भी नहीं पहन सकता मर्द। तो आप सोने को चांदी को ना तो खा सकते हैं, ना तो इनके अंदर खुशबू होती है, डॉलरों की खुशबू अपनी जगह पर, ठीक है, नोट की खुशबू अपनी जगह पर, वो ईद के दिन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस खुशबू से तो आप कोई फायदा नहीं होता ना, आप अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो पैसे का कोई मतलब नहीं है असल में, पैसे का फायदा इंसान को कब होता है, यानी कब उससे जो है वो एक्चुअल कोई बेनिफिट हासिल करता है, जब उस पैसे के जरिए से वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज होती, अब बगैर पैसे के तो मर्सिडीज बेंज नहीं आ सकती ना मेरे पास, पैसा आएगा तो मैं उसको लेकर के जाऊंगा ऑटो शॉप के अंदर, वहां से जो है मर्सिडीज बेंज लेके खरीद के ले आऊंगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, ठीक है ना। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो है ना वो एक आइलैंड होता, ठीक है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह पे मेरा आइलैंड होता, अब ऐसे तो नहीं वो आइलैंड मेरे पास आ जाएगा, पैसे होंगे तो फिर मैं आइलैंड खरीदूंगा ना, तो मेरे पास पैसे आए मैंने जाके आइलैंड खरीद लिया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, ठीक है ना। उसी तरीके से जेवर चाहिए किसी औरत को, पैसे आए जेवर जाके खरीद लिया, तो पैसे की तो ये वैल्यू है ना, विदाउट दिस पैसा डज नॉट हैव एनी वैल्यू, है ना। क्या है, भूख लगेगी पैसा खा लिया, भूख लगेगी चांदी पी ली, चांदी के जो है वो लिक्विड बना करके पी लिया, प्यास मिट गई, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ख्वाहिश पूरी करना, जो पैसे से इस दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरेगा तो क्या होगा, अब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकेंगी, अब उसका पैसा जो है वो यहीं रह जाएगा कब्र में, उसको भी पता है, इतना तो उसको भी पता है कब्र में जाकर के ना, वहां पे कोई मार्केट नहीं लगेगी, वहां पे जाकर के पैसा दे करके जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये तो सारी दुनिया को पता है, तो इस वजह से वो मरने से डरता है। लेकिन एक दूसरा शख्स जिसके पास माल दौलत बे इंतहा है, जैसे जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन उस माल और दौलत को वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, करते ही नहीं इस्तेमाल ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, हाँ जरूरियात पूरी करने के लिए करते हैं, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इनका क्या मसला है भाई, मरेंगे तो इनको पता है कि इनका ख्वाहिशात जो है वो सारी की सारी कब्र में पूरी होंगी, और कब्र के बाद आखिरत के मैदान में पूरी होंगी, अर्श के साए के तले, और फिर उसके बाद जो है वो जन्नत में पूरी होंगी, ठीक है। माल दौलत बे इंतहा है लेकिन मौत से खौफ नहीं है, क्योंकि दे डिड नॉट मीट दैट कंडीशन, जिस कंडीशन की वजह से वो मौत से खौफ पैदा होता है इंसान के अंदर, इतनी सी बात है, ठीक है। जब भी हमारे मशायख फरमाते हैं कि पहले साहे, पहले अहले दिल बन जाइए, पहले अहले दिल बन जाइए, फिर उसके बाद अहले मिल बन जाइए, फिर आप जितने भी पैसे कमाएं फिर आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप दिल के गनी होंगे, आप जो है वो एक सादा जिंदगी गुजार रहे होंगे, जरूरियात पूरी कर रहे होंगे, ख्वाहिशात के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, अब आपको मौत से खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की और ऐसी जिंदगी की अल्लाह ताला से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी अता फरमाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छा, इन्होंने सर्विस लगाई हुई है, ठीक है, क्लास के अंदर जो है करेंसी कैलकुलेशन करके बताते रहते हैं, माशाल्लाह, ठीक है, जजाकुम खैर, आप तो दवाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह के जो यार इसने मेरी सुना उनको भी सुना।